मिस्टर और मिसेस बजाज ने शर्मिंदगी से अपना सर झुकाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए उसके सामने। आरवी को ये जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उनके हाथों को पकड़कर नीचे कर दिया। अंकल आंटी, ऐसे तो मत करिए। बड़े होकर आप मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, पाप लगेगा मुझे। वैसे भी मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है, और जिसने गलत किया है उसको तो सजा मिलेगी ही, तो आप दोनों अपने मन में कोई गिल्ट मत रखिए। दोनों ने आरवी के सर पर हाथ रखकर उसको ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर आरवी ने नजरें घुमाते हुए कहा, अंकल, मुझे उन आंटी से मिलकर उनका धन्यवाद करना था जिन्होंने उस दिन मेरा रक्षण करने का प्रयास किया था। आरवी की बात सुनकर मिसेस बजाज ने मुस्कुराकर कहा, आप सावित्री बहन की बात कर रही हैं? सावित्री नाम सुनते ही आरवी चौंक गई। उसका विश्वास अब और दृढ़ हो गया और उसने सहमति में सर हिला दिया। अनीता जी वहां से चली गईं और कुछ देर बाद उनके साथ एक औरत किचन से बाहर निकल कर आईं। आरवी, जिसकी नज़रें उसी दिशा पर टिकी थी जहां अनीता जी गई थीं, उसकी नज़र जैसे ही सामने से आती सावित्री जी पर पड़ी, उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आए और साथ ही आंखों में सैकड़ों सवालों मरने लगे। वो किसी तरह खुद को शांत रखे खड़ी रही, क्योंकि यहां वो अपना संयम नहीं खो सकती थी। उसको पेशेंस से काम लेना था ताकि सहजता से अपने सवालों के जवाब मिल सकें। सावित्री जी वहां आईं तो उन्हें आरवी को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि विहान से उसकी शादी के दौरान भले वो उससे मिली नहीं थी पर फोटो देखी थी, और बाद में मिस्टर बजाज ने उन्हें बताया था कि विहान उसी लड़की के साथ बदसुलूकी कर रहा था जिससे उसकी शादी होने वाली थी पर हुई नहीं। उन्होंने आरवी को देखा तो उसके पास चली आईं और चिंता भरे स्वर में बोली, बेटा आप ठीक हैं? हमें माफ़ कीजिए, उस वक्त हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सके, पर हमें पता चला कि आपके पति वक्त पर आ गए थे और उन्होंने विहान के बुरे इरादों को नाकाम करते हुए आपके मान का रक्षण किया। जी सही सुना आपने, उस दिन मेरे पति ने आकर मेरी मर्यादा को भंग होने से बचाया और मेरे मान का रक्षण किया, पर उनसे पहले आपने मेरी मदद की। अगर आपने उस दिन बीच में आकर विहान को नहीं रोका होता, उसका ध्यान मुझ पर से नहीं हटाया होता, तो शायद मेरे पति के आने तक मैं उनके काबिल नहीं रहती। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर, जिसके लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ, इसीलिए आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आरवी ने अपने नेचर के अकॉर्डिंग सौम्य स्वर में अपनी बात कही। उसकी निगाहें अब भी उन पर टिकी हुई थीं। आरवी की बातें सुनकर सावित्री जी मुस्कुराईं और उसकी ठोड़ी पकड़कर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। इतनी प्यारी हैं आप, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और कभी आप पर किसी की गंदी नज़र न पड़े। आपने आशीर्वाद दिया है तो असर ज़रूर होगा, क्योंकि माँ का दर्जा ईश्वर से भी ऊँचा है और उनका दिया कोई आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता। कितनी शालीन सरल स्वभाव है आपका, इतनी मीठी बोली, मोहक चेहरा। वो इंसान खुशकिस्मत होगा जिन्हें अर्धांगिनी के रूप में आप जैसी रूपवान और गुणवान लड़की मिली, और वो परिवार भाग्यशाली होगा जिनके घर बहू बनकर आपने कदम रखकर उनके घर को सुख समृद्धि से भर दिया। सावित्री जी की बात सुनकर आरवी कुछ पल खामोशी से उन्हें देखती रही। फिर उसने कुछ पल ठहरने के बाद सवाल किया, शायद आपकी ये बातें झूठी हैं, क्योंकि मुझसे ना मेरे पति खुश हैं और ना ही मेरे कदम पड़ने पर उस घर में सुख समृद्धि आई है, बल्कि मेरे वजह से उस घर की शांति भंग हो गई है। आरवी की बात सुनकर तीनों इंसान चौंक गए और हैरान परेशान से उसका चेहरा तकने लगे। सावित्री जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं बेटा? आपसे एक सवाल पूछूं माँ? आरवी ने उनके प्रश्न के उत्तर में उल्टा उन्हीं से प्रश्न करने की इजाज़त मांग ली। उसने उन्हें माँ कहकर पुकारा, जिस बात से तीनों और ज्यादा हैरान हो गए। आरवी के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर सावित्री जी ने असमंजस भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, पूछिए बेटा। माँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? एक बार फिर उसका सवाल सुनकर तीनों ही चौंक गए। सावित्री जी कंफ्यूज निगाहों से उसको देखते हुए बोली, बस इतना जानते हैं कि एक वक्त था जब विहान से आपकी शादी होने वाली थी। आरवी उनकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुराई। फिर एक बार फिर उसने गंभीरता से प्रश्न किया, ठीक है, आप मुझे नहीं जानती, पर क्या आप मेरे पति को भी नहीं जानती? नहीं बेटा। पर आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? सावित्री जी कुछ हैरान परेशान सी नजर आ रही थी। आरवी ने बारी बारी उनकी आंखों में देखा, फिर आगे बोली, क्या आप शांतनु मल्होत्रा को नहीं जानती? ये नाम सुनते ही सावित्री जी के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों की पुतलियां हैरानी से फैल गईं। वो अभी इस सवाल के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि आरवी ने उनसे अगला सवाल पूछ लिया, क्या आप सुभाष मल्होत्रा को नहीं जानती? मैं उन्हीं सुभाष मल्होत्रा की बहू और शांतनु मल्होत्रा की पत्नी हूँ माँ। क्या अब भी आपको नहीं पता कि क्या रिश्ता है मेरा आपसे? क्या अब भी आपको एहसास नहीं कि उस दिन आपने एक अनजान लड़की की नहीं बल्कि अपनी बहू की इज्जत लूटने से बचाई थी? जहां आरवी के पहले के सवाल सुनकर मिस्टर एंड मिसेस बजाज हैरान परेशान से कभी आरवी तो कभी सावित्री जी को देख रहे थे, वहीं उसका आखिरी का सवाल सुनकर दोनों शॉक्ड रह गए। सावित्री जी सुन खड़ी थी, चेहरे पर अनकहासा दर्द पसरा हुआ था और आंखों में दर्द आंसुओं का सैलाब बनकर उमड़ रहा था। आरवी कुछ पल खामोशी से उन्हें देखती रही, फिर उनकी आंसुओं से भरी आंखों को देखते हुए दर्द भरी मुस्कान अपने अधरों पर सजाते हुए बोली, आपके लब भले खामोश हैं पर आपकी आंसुओं से भरी आंखों ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया मुझे। सब याद है आपको, खुद से जुड़े उन लोगों को और उनसे अपने संबंध को भूली नहीं हैं आप। अब बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब आप इसी शहर में हैं, जब आपको सब याद है, तो क्यों आप इतने सालों तक अपने परिवार, अपने पति और अपने बेटे से दूर रहीं? आज मैं यहाँ बस आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे शक हुआ कि सालों से जिस माँ के प्यार के लिए मिस्टर मल्होत्रा तरसते आए हैं, वो यहाँ छुपी बैठी हैं। वो जानबूझकर किसी के सामने नहीं आती। मैं यहाँ आपसे ये जानने आई हूँ कि जब आप यहीं मुंबई में हैं और सब याद है आपको, तो क्यों आप सबसे छुप कर रह रही हैं? क्यों आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं? क्यों अचानक ही एक रात आप अपने पति और बेटे को छोड़कर चली गईं और यहाँ होते हुए कभी लौटकर उनके पास नहीं गईं? क्यों सालों से उनसे दूर रहकर उन्हें अपने लिए तड़पा रही हैं? आखिर क्या वजह है इन सबकी? आर्य के सवाल सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर अजीब सा दर्द छलकने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, मन चित्कार करने लगा, दिल में एक हुक सी उठी, कुछ धुंधली तस्वीरें आंखों के आगे घूमने लगी। आखिर में वो आर्वी के सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकी और दर्द में तड़पते हुए बोली, क्योंकि उस काली रात ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था। अपने पति पर तन मन से अपना सब समर्पित किया था हमने, पर उस रात ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम उनके काबिल नहीं रह गए थे, हम उनका सामना नहीं कर सकते, उनसे आंखें नहीं मिला सकते। सावित्री नाम है हमारा, पर हम अपने सतीत्व का रक्षण नहीं कर सके। मन, कर्म, वचन से हमने जिन्हें अपना पति माना, जिनको खुद को पूर्ण रूप और दिल से समर्पित किया, हम खुद को उनका बनाकर नहीं रख सके। गैर मर्द के स्पर्श से हम अपवित्र हो गए हैं और दूषित फूल, जिसके मान को एक दुष्ट ने अपने गुरूर और अहंकार तले बड़ी ही बेदर्दी से रौंदा हो, वो अपने स्वामी के समर्पण योग्य नहीं होते। इसीलिए हम चले गए उनकी जिंदगी से। हम तो मारना चाहते थे खुद को, पर हमारी बदनसीबी की हमें मौत भी नहीं नसीब हुई और सालों से घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं हम। नहीं जा सके हम उनके पास, क्योंकि हम उनकी पत्नी, उनकी सावित्री कहलाने का हक खो चुके थे, दूषित हो गए थे हम। सावित्री जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, चेहरा दर्द और बेबसी से सना था। पहले तो आरवी उनकी बात सुनकर कुछ हैरान हो गई, पर फिर धीरे धीरे उनकी आधी बातें समझ आने लगी उसे।
वो उनका दर्द, उनकी तकलीफ महसूस कर पा रही थी, क्योंकि इस दर्द से वो भी गुजरी थी। उसकी आंखों में भी पानी आ गया, पर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया और रोषपूर्ण लहजे में बोली, अच्छा, इस हिसाब से तो मैं भी मैली हो गई हूँ और आपसे ज्यादा अपवित्र हूँ, क्योंकि मुझे एक नहीं, तीन तीन बार गैर मर्द ने छुआ है। तो क्या मुझे भी अपने पति और परिवार को छोड़कर मुंह छुपाकर बैठ जाना चाहिए या अपनी जान दे देनी चाहिए? अगर किसी को मेरी ना बर्दाश्त नहीं हुई और अपने अहम की संतुष्टि के लिए उसने मेरे मान को भंग करने की कोशिश की, तो इसमें मेरा क्या दोष है माँ? मुझे सजा क्यों मिलेगी? और अगर मेरा दोष नहीं, तो आप दोषी कैसे हुई? क्यों दे रही हैं अपने साथ साथ अपने परिवार को उस गुनाह की सजा जो ना आपने किए ना उन्होंने किए? आपको पता भी नहीं कि आपके पीठ पीछे वहाँ क्या क्या हो गया है। आप पर इल्ज़ाम लगा है कि आपने डैड को धोखा दिया है। आपके चरित्र पर दाग लगा है कि आपके ठाकुर साहब के साथ नाजायज संबंध थे और आपने उनके साथ मिलकर अपने ही पति की जान लेने की कोशिश की है। वो दो परिवार जो कभी एक हुआ करते थे, हर सुख दुख में साथ निभाते थे, आज उनके बीच इतनी गहरी दुश्मनी है कि वो दुश्मनी सब कुछ खत्म कर देगी। उस नफरत और बदले की आग में न सिर्फ आपका बेटा जल रहा है, बल्कि जल रही हूँ मैं और हमारा रिश्ता, क्योंकि उन्हें ठाकुरों से नफरत है और मेरी रगों में अमरजीत ठाकुर का खून बहता है। आरवी रुकी और आंखों में आई नमी को पोंछते हुए आगे कहा, वापिस चलिए माँ, डैड आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पति, आपके बेटे और आपके परिवार को जरूरत है आपकी। अगर आज आपने हिम्मत नहीं दिखाई, सबका सामना नहीं किया, सालों पहले क्या हुआ और किसने किया ये सबको नहीं बताया, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर ठाकुर साहब आपके गुनाहगार हैं, तो चलकर सजा दीजिए उन्हें, ताकि ये दुश्मनी यहीं खत्म हो। और अगर इन सब के पीछे कोई और है, तो सच बताइए सबको, ताकि दोनों परिवार के बीच की दुश्मनी मिट सके। आरवी की बात सुनकर सावित्री जी को गहरा सदमा लगा, उनकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गईं। आरवी के शब्द उनके कानों में शीशों के कीर्चे जैसे चुभने लगे। उनकी अंतरात्मा तक उसकी बात सुनकर सिहर उठी। वो शॉक्ड सी वहीं बैठ गईं और खुद में ही बड़बड़ाने लगी, हमने धोखा नहीं दिया उन्हें, हमारा कोई संबंध नहीं भाई साहब के साथ, हम अपने सुहाग को मिटाने की कोशिश कभी नहीं कर सकते, कैसे हो गया ये सब? सब हमें दोषी समझ रहे होंगे, सब बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आरवी ने उन्हें बड़बड़ाते सुना तो उनके पास बैठ गईं और उनके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बोली, नहीं माँ, अभी भी कुछ नहीं बिखरा है, आप चाहें तो सब संभाल सकती हैं, डैड को आज भी आप पर विश्वास है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उन्हें इंतजार है आपका, वो आज भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। एक बार चलकर सबको हकीकत बता दीजिए कि आखिर क्या हुआ था आपके साथ, किसने आपके मान को भंग किया? सब ठीक हो जाएगा माँ, अगर ठाकुर साहब इन सब के पीछे है तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी।